ब्रह्मचार्य का अभिप्राय और उसका रूप। ब्रह्मचार्य की महिमा अपार है। संसार में सफलता की प्राप्ति के लिए तथा श्रेष्ठ मानव बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पहली शर्त है। ब्रह्मचर्य ही प्राणी मात्र का जीवन है। ब्रह्मचर्य में भारी शक्तियां स्वतः अकुशती है। ब्रह्मचर्य में इसकी महिमा अपार है। वास्तव में इसकी महिमा अपार है। ब्रह्मचर्य में दो शब्द हैं, एक ब्रह्म और दूसरा चर्य। ब्रह्म शब्द ईश्वर, वेद, तत्व, बीरज, तप आदि अनेक अर्थ बोधक है। चर्य शब्द के की आचरण, चिंतन, उपाय, रक्षण आदि बहुत से अर्थ होते हैं, किंतु जहां ब्रह्म का अर्थ बीरज और चर्य का अर्थ रक्षा करना ही विवक्षित है। यदि विचार किया जाए तो ब्रह्म शब्द का बीर्य अर्थ बड़ा ही सार्थक है। इसी से चतुर्वेद में जो लिखा है, तदेव शक तदर ब्रह्मा ता अपा स प्रजापति, अर्थात वही शुक्र यानी वीर्य है, वही जीवन है, वही प्रजापति है। अब यदि वीर्य को ब्रह्म कहा जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि वीर्य से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। अतएव ब्रह्म वीर्य रूप है। जहां पर यह बात ध्यान में रखना नितांत आवश्यक है कि बीरज का स्थूल रूप ब्रह्म नहीं, बल्कि बीरज में जो अलौकिक शक्ति अलक्षल होती है वह ब्रह्म है। बीरज की वह शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि दृश्य पदार्थ साकार होता है तथा शक्ति आकार रहित होती है। कहने का मतलब यह है कि बीरज में जो सूक्ष्म ताती सूक्ष्म उत्पादन तत्व है वही वीर्य का असली स्वरूप है, और उसका अनुभव एक ब्रह्मचारी ही कर सकता है। बिना वीर्य रक्षा के हम क्या हैं तथा इस जगत का रचयिता कौन है, यह समझा नहीं जा सकता और ना ही निर्वाण पद की प्राप्ति हो सकती है। वीर्य रक्षा के द्वारा ही संसार तथा पारमार्थिक असाध्य साधन सफल होते हैं, ब्रह्मनिष्ठता प्राप्त होती है। अतएव वीर्य रक्षा को ब्रह्मचर्य कहा गया है। अब यह बात सहज ही समझ में आ सकती है कि ऐसे प्रयोजनीय तत्व का ब्रह्म नाम क्यों रखा गया है। पूर्ण ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूर्ण ब्रह्म अनुभव करे, समूचे जगत को ब्रह्म में देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तब ऐसी भावना हो जाए तो समझना चाहिए कि पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन करने की स्थिति में मनुष्य आ पहुंचा है। यदि ब्रह्मचारी श्रम तथा तप करके अपना तथा लोक का भला करे तो समझना चाहिए कि वह अपूर्ण ब्रह्मचारी हैं। यह शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन ही रहेगा, जहां तो केवल इतना ही कहना अभिप्रेत है कि वीर्य रक्षण द्वारा शक्ति संपन्न होकर मनोयोग तथा परोपकारी सिद्ध हो। वस्तुतः ब्रह्मचारी वह है जो ब्रह्म जाने बड़ा होने के लिए चारों जाने पुरुषार्थ करे, अर्थात आलस पुराना सात और शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि करना, अमृतत्व प्राप्त करना ब्रह्मचारी का धर्म है। और जैसा शरीर में वीर्य की स्थिति होने में सपन्न हो सकते हैं। इसी से ब्रह्मचारी को वीर्य की विशेष रक्षा का प्रयोजन करना चाहिए, तभी वह सच्चा ब्रह्मचारी कहलाने का अधिकारी बन सकेगा। हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि इस अध्याय में ब्रह्मचर्य की महिमा का संक्षेप में विवरण उपस्थित करें। आगे के अध्याय में ब्रह्मचर्य के पालन के नियम बहुत प्रस्तुत किए जाएंगे। आगे इन विषय की वैज्ञानिक सम्यक आलोचना की जाएगी। आगे बढ़ते से पूर्व हमें इस बात कंठस्थ कर लेनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है, उसका विपरीत रुख मृत्यु संसार में बकास उन्मुख होने के लिए इस रूप की ओर महिमा को हृदय संगम करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इसका प्रतिकूल आचरण मौत है। वह एक अकट सत्य है, अमर सिद्धांत है। वीर्य नाश के कारण मानव जगत की दुर्दशा पर प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, मगर वह यह नहीं सोचता कि इसका कारण क्या है। अवश्य ही कुछ लोग इसका ज्ञात रखते हैं, किंतु अधिकांश यही समझते हैं कि वह देविच्छा है। ऐसे ही लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दब दब आलसी पुकारा, भाव भरोसे जो रहे का पुरुष जप तेहे कहा है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बिना कारण के इस संसार में कोई कार्य सफल नहीं होता, चाहे वह मानवीय हो अथवा दैवी। इसी नियम को सामने रखकर जब हम मानव दुर्दशा का कारण ढूंढते हैं तो हमें संसार में फैली अनेकानेक बीमारियां मिलती हैं। इन सबों का मूल कारण वीर्यनाश। वीर्यनाश इंद्रियों का दुरुपयोग करने से होता है। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं: श्रोत्र, कान, त्वचा, चमड़ी, नेत्र, जीभ और नासिका। ये 5 स्पर्श इंद्रियां हैं: नाक, पानी, पाद, उपस्थ और गुदाजे कर्म इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां मन के अधीन हैं: पाणी तो हाथ, पाद से पैर, उपस्थ से मूत्र इंद्री और गुदा मल त्याग इंद्री। ये 10 इंद्रियां मन के अधीन हैं। मन की प्रेरणा से ही सब इंद्रियां अपने अपने कामों में रत होती है। इंद्रियां का सदुपयोग करना जीवन को सुमनत करना है। इनका ही दुरुपयोग शरीर को जर्जर, खंडित और दुर्बल बना देता है। इस समय हमारी इंद्रियां बिगड़ी हुई हैं, इसी से हम नाना प्रकार की बीमारियां में रत हैं। कान रस पूर्ण बातें सुनने को रत रहते हैं, त्वचा कोमल वस्तुओं को स्पर्श करने में सुख मानती है, आंखें सुंदर ललनाओं के शरीर गठन की आभा को देखकर अपना कार्य समाप्त करती है। कहां तक बताया जावे, सभी इंद्रियों का यही हाल है। हम इन पर अधिकार न करके स्वेच्छापूर्वक बहकने की अनुमति दे रहे हैं, इसीलिए इनकी यह दशा हो गई है। यूं तो सभी इंद्रियां की स्वेच्छाचारता हानिकारक है, मगर उपस्थ इंद्रिय लिंग इंद्रिय की स्वेच्छाचारता को जीवन को तबाह करके रख देती है, क्यों इससे ही जीवन का सब मूल तत्व ही शरीर से निकल जाता है। इसकी प्रचंडता से सारी दुनिया नष्ट हो जाती है। यह बात पहले लिखी जा चुकी है कि वीर्य का नाश ही समुचे अनर्थ का मूल कारण है। ऐसा करने से अल्पायु, शरीर कृशता, ज्योति क्षीणता, अवयवों की शिथिलता आ जाती है। यही वीर्य की रक्षा की जाए तो सारी इंद्रियां बलवती हो जाएं। पर इंद्रियों का परस्पर गहरा संबंध है, उनका विकास सहयोग से होता है। जहां वीरज रक्षा से ये सशक्त होती हैं, वहां उनका सन्यासी होना भी जरूरी है। अब देखना है कि जब हमारी दुर्बलता का मूल कारण वीरज नाश है, तो यह जानने की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम उन मूल कारणों का पता लगाएं। जब हम इंद्रियों के दुरुपयोग के कारणों पर विचार करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर के सामने आता है सामाजिक दोष। समाज में कई ऐसी बुराइयां हैं जिनके कारण हमारा बल जीवन ही अशुद्ध हो जाता है। अंधकार, लोगों में गाली देने और गंदे शब्द बोलने की सहज वृत्ति काम करती है। उन गंदे शब्दों को बार बार सुनने से कोमल मति बालकों के मस्तक में एक घिनौना चित्र खिंचने लगता है। शब्दों का जीवन में विशेष महत्व है, उनका बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि लोग बच्चों को ऐसे मनुष्यों के पास बैठने न दें जो विषय बलास सूचक अश्लील शब्द बोलते हों या बातें करते हों। साथ ही नम्रता पूर्वक ऐसे लोगों की आदत छुड़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। उन्हें गंदे गीतों से भी दूर रखना चाहिए। हमारे जहां गंदे गीतों का प्रचलन इंसानों को तबाही की ओर लिए जा रहा है, उससे बच्चों का हृदय तो भ्रष्ट होता ही है, साथ ही स्त्री पुरुषों के सोविचार दूर हुए बिना नहीं रहते। ब्रह्मचर्य पालन के लिए गंदे गीतों तथा विलासता प्रधान गीतों से बचना चाहिए। समाज में बाल विवाह की प्रथा भी नीचता पूर्ण कृतों से पीड़ित है। इस प्रथा से बालकाल में ही अपरिपक्व अवस्था में विषयी हो जाते हैं। उससे बालक ना तो जीवन का पूर्ण आनंद ही उठा सकते हैं और ना कोई पुरुषार्थ ही कर सकते हैं। इसी प्रकार वृद्ध विवाह के कारण युवती स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। फिर बहुत से नरपिशाच उन विधवाओं के पीछे पड़कर वीरज नाश करते हैं। कुसंग, सत्संग से जितना लाभ होता है, कुसंग से उतनी ही हानि होती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह गुणों को जल्दी नहीं ग्रहण कर सकता, किंतु दुर्गुणों को बहुत जल्द धारण कर लेता है। सत्संग ही सुख और कुसंग ही दुख का आधार है। कुछ लड़के तो अपने अवस्था वाले कुसंगियों के साथ वीरज का नाश करने लग जाते हैं और कुछ अपने से बड़ी अवस्था वालों के साथ पड़ोस के लड़कों के साथ खेलने से भ्रष्ट हो जाते हैं। धूम्रपान, आजकल के लड़के सिगरेट बीड़ी तथा तम्बाकू पीने में अपनी शान समझते हैं। पहले तो वह शौकिया इनका प्रयोग करते हैं, पीछे इसके गहरे आदि हो जाते हैं, किंतु धूम्रपान करना अति हानिकारक है। वे नहीं जानते यह नसों में अस्वाभाविक उत्तेजना पैदा करता है। अतएव हमारा फर्ज ही जाता है फर्ज हो जाता है कि हम दूषित प्रवृत्ति से बचें। जिनको स्वपन दोष की बीमारी हो, वह तो इसका सिगरेट बीड़ी आदि प्रयोग नितांत स्वैगत कर दें। या निंद्रे स्पर्श या निंद्रे जानी मूत्र इंद्री को बेकार छूना भी वीरज नाश का कारण है। कुछ लोगों को दाद खाज के कारण मूत्र इंद्रे में गुदगुदी प्रतीत होती है और लड़के हस्त मैथुन के आदि हो जाते हैं, किंतु कुछ लड़के व्यर्थ ही उसे छूते हैं। इस प्रकार जिस दिन उनके शरीर में उत्तेजना विशेष प्रकार से होती है वह उस दिन लिंग को बार बार छूते हैं, ऐसा करने से उन्हें आनंद सा मिलता है, फिर तो वह सदा के लिए उस रोग में फंस जाते हैं। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लिंग को छूने की ओर ध्यान आकृष्ट न हो। बच्चों को कभी भी उत्तेजित पदार्थ नहीं खिलाने चाहिए ताकि दाद काज आदि रोग न उत्पन्न हो। उन्हें शुरू से ही शुद्धता रखने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें ऐसे पदार्थ देने चाहिए कि वह उत्तेजक न हो और जिनसे शरीर में प्रवाहित रक्त में विषमता उत्पन्न न हो तथा बच्चों को भयानक रहस्य का पता न चल सके। इस कारण अनेक अनपी कारण हैं जो कि संक्षेप में जान दिए जाते हैं, इन पर आप आचरण करें। नंबर एक, कुसंग से बचो। दो, अतेजिक पदार्थों का त्याग करो। तीसरा, अश्लील उपन्यासों को मत पढ़ो। चौथा, गंदी बात मत करो। पांचवा, बुरे साथियों से बचो। छठवां, विचारों को गंदी बातों की दुनिया में मत फंसने दो। सातवां, आहार विहार में शुचिता लाओ। आठवां, सिगरेट आदि मादक पदार्थों से दूर रहो। नौवां, लिंग को अकारण ही मत छुओ। दसवां, हमेशा विचारों को साफ रखो। ब्रह्मचर्य के पालन हेतु ऊपर युक्त नियमों पर आचरण करना जरूरी है, नहीं तो कटीले तारों पर चलना संभव हो जाएगा। वीर्य नाश के चिन्ह। पहला, वीर्य नष्ट करने वाला बालक बड़े आदमियों की आंख से आंख नहीं मिलाता है, अपराधी की तरह शर्माकर नीची कर लेता है, बड़ों के सामने जाने से पैर खाता है, अपना मुंह छुपाना चाहता है। दूसरा, बहुत तेरे बालक लड़के छाती निकाल कर चलते हैं और अकड़ते हैं, बेटीश हैं, वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका अवगुण छिप जाएगा। दोष करने पर भी वह अपने को निर्दोष दिखाना चाहते हैं, यह बात स्वतः को छलने की प्रतीक है। तीसरा, विषयी बालकों का मुंह दुखी और उदास चेहरा बन जाता है, उनकी शक्ल रोनी सूरत बन जाती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन क्रोध तथा रूखापन आ जाता है, उनका मुखमंडल निस्तेज और पीला पड़ जाता है। चौथा, गालों पर गुलाबी रंगत नहीं रहती, काले दाग और चाही पड़ने लगती हैं। पांचवा, आंखें भीतर की ओर बैठ जाती है। छठवा, गाल पिचक जाते हैं। सातवां, कमर झुक जाती है। आठवां, छाती बैठ जाती है। नौवां, बाल पकने और चढ़ने लग जाते हैं। दसवां, बिना बीमारी जर्जर दुर्बल सुस्त और आलसी बन जाता है। ग्यारहवां, किसी काम में जी नहीं लगता। बारहवां, थोड़ा दौड़ने पर हांफने लगता है। तेरहवां, साधारण कार्य पर भी कठिन दिखाई देता है। चौदहवां, व्यायाम कुश्ती फुटबॉल आदि खेल अच्छे नहीं लगते हैं। पंद्रहवां, हर समय चिंता में रहना। सोलहवां, थोड़े से डर से छाती धड़कने लगती है। सतारहवां, थोड़ा सा दुख पहाड़ समान दिखाई पड़ता है। अठारहवां, लिखने पढ़ने से घृणा हो जाती है। उन्नीसवां, भूख बंद हो जाती है, अजीर्ण निवास करने लगता है। बीसवां, नींद कम आना या अधिक आना। इक्कीसवां, उठते समय उत्साह मालूम नहीं देता, आंखों के सामने अंधकार नोचने लगया है। बाईसवां, रात में पजामा खराब हो जाता, स्वप्न दोष हो जाता है। तेईसवां, बीरज पानी की तरह पतला हो जाता है, पेशाब के साथ बीरज गिरने लगता है, चौबीस नपुंसकता बटते लगती है, पच्चीस में बारंबार पेशाब लगती है, बदन भर में पीड़ा मालूम पड़ती है, छब्बीस में शरीर में शीतलता पैदा होती है, सताई में हाथ पैर के तलवों में पसीना निकलता है, अठाई में हाथ पैर में कंप कंपी पैदा होती है, उनतीस में हाथ से पकड़ी चीज गिर पड़ना, तीस में नाटक सिनेमा और श्रृंगार विषयक पुस्तक देखने की रुचि होती है, इकतीस में सुकून दिखाई देता है, शमशान और मास्टर मलूम है प्रेत, सुकून दिखाई देता है, शमशान और मास्टर मलूम होते हैं प्रेत, बत्ती में स्त्रियों के साथ बैठना अच्छा लगता है, तेती मजाक करने की आदत पड़ जाती है, चौथी स्त्रियों की तरफ कूर कर देखना, आंख मारना, पैंती में चेहरे पर मुहासे पैदा होना, छत्ती में आंख में सामने अंधेरा छा जाना, सताई में स्मरण शक्ति कम हो जाना, पढ़ा हुआ भूल जाना, भूगोल और इतिहास से नफरत हो जाना, अठत्ती में देखा हुआ स्वप्न भूल जाना, उनतालीस में रखी हुई चीज भूल जाना कि कहाँ रखी है, चालीस में याद की हुई कविता भूल जाना, इकतालीस में मौसम का दबाव न सहा जाना, गर्मी में अधिक गर्मी लगती है और सर्दी में अधिक सर्दी लगती है, बतालीस में चित्त की चंचलता हो जाना, तरतालीस में अपने प्रतिज्ञा पूर्ण न कर सकना, तैतालीस में सब काम अधूरे छोड़ना, पैंतालीस में बुरे काम मन लगा कर पूरे करना, छियालीस में विचारों को बदलते रहना, सैंतालीस में निश्चयहीन हो जाना, अड़तालीस में दिमाग में गर्मी छा जाना, उनंजवा नेत्रों में जलन होना, पजामा नेत्रों में पानी बहना, अकवंजवा क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न हो जाना, बवंजवा मस्तक में दर्द होना, तरवंजवा दांतों के मसूड़े फूलना, मुंह में बदबू आना, चिरंजवा चौक बैठना और चौक कर चलना, पचवंजवा शब्द में कोमलता का नष्ट होना और कर्कशता का आना, छपंजवा अप्रिय यानी कटु भाषण करना, सतवंजवा छाती हड्डियां दिखाई देना, अठवंजवा कंधे में गड्ढे पड़ जाना, उनंजवा नाक पर काला दाग पड़ जाना, साठवां नेत्रों के पास कहल का पड़ जाना, काट में जहां जाना वहां निंदित और अपमानित होना और फिर मर जाना, बाट में आयु का कट जाना, त्रेट में संतान तथा संपत्ति का कम होना, चौट में कभी कभी आत्मघात का विचार करना, पैंट में अपने को निरर्थक चलना, छियाट में भूख का लगना, सताट में खाने का हजम ना होना, ठाट में निराशवादी होकर कविता करना, उनहत्तर में किसी अनव्याही औरत से डरना, बालकों पर माता पिता का प्रभाव, नींव पुष्ट होने पर पाप और टालका स्थिर रहती है, बीज निरोग रहने पर ही अंकुर ठीक निकलता है, इसलिए बालकों ब्रह्मचारी बनने के लिए माता पिता कर्तव्य हैं, वे कि इस पुस्तक में बताए नियमों के अनुकूल गर्भाधान करें ताकि लड़के संजमी और सचरित्र हों, बालकों पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है उतना किसी भी व्यक्ति का नहीं पड़ता, आचार्यों का कथन है कि बालक अपनी माता के गर्भ में 9 मास रहकर जितनी बातें सीखता है उतनी बातें जिंदगी पर नहीं सीखता, हमारा तो जहां तक कहना है कि मानव जीवन में 9 मास की सीखी हुई बातों का किंचित परिवर्तित एवं परिवर्धित विकास पर होता है। वह नई बात एक भी नहीं सीखता, जो भी हो इतना तो सबको मानना पड़ेगा कि माता पिता के अनुकूल ही बच्चे पैदा होते हैं। पिता से अधिक दायित्व माता का है, क्योंकि पिता तो वीर्यदान देकर अलग हो जाता है, किंतु माता अपने क्षेत्र में उस वीर्य को रखकर पालती पोषती है। पुष्ट और निर्दोष वीर्य पाकर विदुषी माताएं अपनी इच्छा अनुसार संतान को बना सकती हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण पाए जाते हैं। उपमन्यु गर्भ में थे, अर्जुन अपनी स्त्री को चक्रव्यूह का हाल सुना रहे थे। सुभद्रा अपने स्वामी की बात बड़े एकाग्र चित से सुना करती थी। अतः व्यूह के छह द्वारों का वर्णन अर्जुन कर गए। गर्भावस्था में ही मनु ने इस रहस्य का भेद पा लिया था। यह कथा महाभारत में लिखी है। ऐसे ही अनेक उदाहरण संसार में आपको मिलेंगे कि माता पिता के आचरण का कर्तव्य है कि वे अपने बालक को सदा प्रसन्न रखें तथा उचित अनुचित की शिक्षा दें, बच्चों के स्वभाव को समझने की चेष्टा करें और उनके वीर्य नाश के कारणों को नष्ट करें। माँ बाप को समझना चाहिए कि ईश्वर ने अमानत के तौर पर बालक को उन्हें सौंपा है। किसी की अमानत की वस्तु आप लापरवाही से बगाड़ दे तो कलंकी होना पड़ता है। बच्चों को सादगी की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे चटोरे और मन चले ना हो जाएं। उन्हें सादा भोजन देना चाहिए, क्योंकि उत्तेजक पदार्थों से बच्चों में वीर्य नष्ट करने का दुर्गुण आ जाता है। ऐसे ही लड़कों के साथ खेलने देना जो सच्चरित्र हों, उनका स्वभाव ऐसे ढंग का बनाना चाहिए कि जिसे वह जीवन मात्र को दया से देखें। किंतु निष्प्रयोजन किसी को छुआ न करें, हमेशा उन्हें अलग सलाना चाहिए। उसके पास किसी दूसरे आदमी को सलाना याल डक्के को लटाना उचित नहीं है। उसके पास किसी दूसरे आदमी को सलाना या लड़के को लेटाना उचित नहीं है। बच्चों के सामने हमेशा सावधान रहना चाहिए। बच्चों को अबोध समझकर उनके सामने केल कहल करना या किसी प्रकार का प्रेम में संकेत करना हानिकारक है। इसे शास्त्रकारों ने नीचे लिखे 8 प्रकार के मैथुन का उल्लेख कर ब्रह्मचारी के लिए उनका निषेध किया है। अर्थात स्मरण, स्पर्श के लिए नेत्र कटाक्ष, गुप्त संभाषण, संकल्प, अद्वसाय क्रिया, निष्पत्ति यानी स्त्री जाल में फंस कर उससे संभोग करना, ये 8 प्रकार के मैथन संभोग हैं। इन 8 से अलग रहना ब्रह्मचारी माता पिता का धर्म है, क्योंकि हम पहले ही कह आए हैं कि बच्चे प्रत्येक वस्तु बड़ी गौर से समझने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त यह 8 मैथुन माता पिता के लिए भी तो हानिकारक हैं, क्योंकि अगर माता पिता स्वयं संजमी नहीं होंगे तो बच्चे को शिक्षा कैसे देंगे। कहने का अभिप्राय यह नहीं कि माता बालकों के सामने ऐसा ना करें, एकांत में ऐसा क्रिया करें, बल्कि मतलब यह है कि उचित समय के अतिरिक्त 8 मैथुन कभी भी उचित नहीं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि माँ बाप बेटे की सच्ची राह पर ला सकते हैं और अपने कुआ चरण से उन्हें बिगाड़ भी सकते हैं। माँ को खास तौर पर अपने बालक की देख रेख करनी चाहिए, उसका विकास एक स्वच्छ दिशा में हो। उचित ख्याल करें तो बच्चे को नैतिकता का प्रतिदिन पाठ पढ़ाएं तथा महापुरुषों की महिमा गाथाओं द्वारा उसका मन बहलाएं। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं वे सब ब्रह्मचर्य के उपासक थे। उनकी माताओं द्वारा ही उन्हें इस दिशा से प्रेरित किया गया था। कुंती, यशोदा, सुभद्रा आदि अनेक भारतीय वीरांगने हमारी बात का ज्वलंत प्रमाण है। माँ के बताए रास्ते पर बच्चा चलता है। पिता द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही वह प्रयत्नशील होता है। वस्तुतः माँ बाप बच्चे के सच्चे निरीक्षक एवं शिक्षक हैं। वे चाहे तो उसका बालक ध्रुव प्रहलाद समान बन सकता है और वह चाहे तो उनका बेटिया बेश प्रस्त और चोर डाकू बन सकता है। ये तो उनकी शिक्षा पर आधारित है। उन्हें सर्गक मैथुन का प्रणाम, प्राकृतिक निजम नैसर्गिक कहलाते हैं तथा अस्वाभाविक निजमों को नैसर्गिक कहा जाता है। आजकल अज्ञानता के कारण कई प्रकार के अनैसर्गिक मैथुनों द्वारा वीरी पाठ करने का बेहतर प्रचार हो गया है, जिसमें गुदा मैथुन और हस्त मैथुन विशेष प्रचलित है। समय के फेर से हमें भी इन दूषित को प्रथाओं के संबंध में जहां कुछ कहना पड़ रहा है, परमात्मा देशवासियों को इस रोग से शीघ्र मुक्त करे, जिससे भविष्य में ऐसा लिखने का या कहने का दुर्भाग्य प्राप्त न हो। अब हम दुख के साथ गुदा मैथुन करने वाले तथा हस्त मैथुन करने वाले और सिखाने वाले नर्क साथियों की कृति पर अपनी लेखनी आगे बढ़ाते हैं। यदि दुर्व्यसनों पर इसका असर न पड़ा तो इस दुखी हृदय की आ में बेबालक कष्ट भोगेंगे। पुरुष के पुरुष का भोग करना गुदा मैथुन कहलाता है। आजकल स्कूलों के लड़के इस बुरे रोग में पढ़कर अपना तथा अपने से छोटों का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। जय रात दिन इसी गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, जिससे पढ़ने लिखने में उनका दिल बिल्कुल नहीं लगता। स्त्री प्रसंग द्वारा वीर्यपात होने से उतनी हानि नहीं है जितनी इससे। मल स्पर्श के कारण इसे बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि मूत्रेंद्रिय भी मर्म स्थान है और मर्म स्थान को बहुत ही सुरक्षित तथा साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा दोष हस्तक्रिया है, इसी को हस्त मैथुन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टारवेशन कहते हैं। इस दुर्व्यसन में फंसा हुआ मनुष्य विशेष सुख क्षान करने की अपराकृतिक चेष्टा करता है। इसकी आदत ऐसे पड़ जाती है, यह हम पिछले प्रकरण में बतला चुके हैं। अब जहां यह बतलाना है कि इसका परिणाम क्या होगा। बात यह है कि नसों द्वारा ही सारे शरीर में रक्त संचालना होता है। यह दौरा एक क्षण को रुक जाए तो मानव फौरन दम तोड़ दे। एक अंग्रेजी विद्वानों ने देखा है कि लिंग इंद्रिय के मूल में तीन बड़ी नसों का संगम होता है, एक बमदजन से नर्वस और जैनक लाइक, दूसरी बुद्धि विषयक नसें नर्वस और इंटेलक्यूअल लाइफ, तीसरी मनोविकार नर्वस ऑफ एनिमल लाइफ, जिससे मनोविकार की और बुद्धि विषय नसों कॉर्पस पर गहरा सुगंध है। अस्मेतन क्रिया से वीर्य पात ही नहीं होता, नसें भी दुर्बल हो जाती है। यही वजह है कि बालावस्था में जब के वीर्य उत्पन्न हुआ होता, हस्तमैथुन अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता, क्योंकि उस समय जब भी वीर्य पात तो नहीं होता, मगर नसें अवश्य शक्तिहीन हो जाती है। नसों की निर्बलता के कारण ही बस परिपक्व अवस्था में रक्त संचार की गति बिगड़ जाती है। जब प्रकृति नियम के विरुद्ध समय पहले वीर्य निकालने की चेष्टा की जाती है, तो उससे समूचे शरीर को भारी धक्का लगता है। इस प्रकार जीवन का मूल तत्व ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि रुधिर की गति मंद हो जाने के कारण लड़कों को जठराग्नि मंद हो जाती है, उससे अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। फिर वहां लड़का बड़ा होने पर जबकि वीर्य पैदा हो जाता है, अपनी आदत छोड़ने के कारण वीर्य नाश भी करने लगता है। ऐसे लोगों का वीर्य परिपक्व होता ही नहीं। वीर्य परिपक्व ना होने के कारण उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह रुगण अल्पाय कृत पौरुषहीन होती है। ऐसे जीवन रहते हुए भी मृत समान है जो अपने वीर्य का नाश करते रहते हैं। इसके लिए माता पिता और सच्चरित्र आचार्यों को सदा सावधान रहना चाहिए। जिन लड़कों को हस्तमैथुन क्रिया की आदत पड़ जाती है, चिड़े चिड़े स्वभाव वाले सुस्त और चगड़ालू हो जाते हैं। उनका शरीर बिना किसी बीमारी के निर्बल हो जाता है, साथ ही चेहरे पर पीलापन भी छा जाता है। आंखों के नीचे काला केरा पड़ जाता है, जो कि 16-17 वर्ष की अवस्था होने पर स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे लड़कों का स्वभाव 14-15 वर्ष की उम्र में फूट कर मोटा पड़ जाता है, तथा कुछ दिनों बाद मुंह पर मुहां से निकलने लगते हैं। बालकों में स्वाभाविक चंचलता एवं फुर्तीपन व्याप्त रहता है, पर जो लड़के इस आदत में पड़ जाते हैं, इन बातों के अतिरिक्त और भी बहुत ऐसे चिन्ह हैं जिनका विस्तार वर्णन है पिछले अध्याय में कर चुके हैं। युवावस्था का विकाश हो जाना भी इस आदत का द्योतक है। अतएव माता पिता का यह परम कर्तव्य है कि वह बालकों पर कड़ी नजर रखें। स्वयं इस बुरी आदत में फंसे लड़कों को भी हस्तमैथुन प्रक्रिया को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में हस्तमैथुन एक भयंकर रोग है जो लग जाने पर आसानी से नहीं छूटता, पर यह रोग जीवानी को तबाह कर लेता है। इस रोग का कांटा आदमी पानी तक नहीं मांगता। संसार में अनेक प्रकार के भीषण रोग हैं, पर यह रोग सबका श्रोमणी है। जो आदमी जीवन में एक बार इस स्वादिष्ट रोग के कुचक्कर में फंस गया, फिर कभी ना निकला। इससे बचने का एक सरल उपाय यह भी है कि पहले तो विचारों में शुद्धता लाएं, नहीं तो जल्दी से विवाह सूत्र में बंध जावें। कामी पुरुषों का अपने पर नियंत्रण नहीं रहता, यह वह उशृंगल हो जाते हैं। इसलिए यह बात कही जा रही है कि यदि ऐसे व्यक्ति अपने को शुद्ध आचार विचार द्वारा ठीक ना कर सकें, तो शीघ्र अति शीघ्र विवाह लेना चाहिए। नशीली चीजों के सेवन से भी यह प्रवृत्ति बढ़ती है। उनसे बचना चाहिए। भोजन बिल्कुल सादा होना चाहिए, फिर इस प्रवृत्ति से बचा जा सकता है। हस्त मैथन से हानि। जिस प्रकार घुन लगने से लकड़ी खोखली हो जाती है, उसी प्रकार हस्त मैथन से आदमी का शरीर खोखला, कमजोर और जर्जर हो जाता है। दूसरा, हस्त मैथन को अंग्रेजी में हैंड प्रैक्टिस कहते हैं और मास्टरबेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से इंद्रियों की नसें ढीली पड़ जाती है। टेढ़ी इंद्रियों वाला पुरुष कभी अच्छी औलाद उत्पन्न नहीं कर सकता। तीसरा, संभोग के समय टेढ़ी इंद्रिय वाले पुरुष से और कभी संतुष्ट नहीं होती। उसे स्त्री और पुरुष संभोग कर्ताओं में मनोमालन की भावना बढ़ती है। चौथा, हस्तमैथुन द्वारा गुप्त इंद्री छोटी और पीली पड़ जाती है, उस पर नशे ऊपर आती है और स्वप्न दोष की बीमारी पैदा हो जाती है, मन दुखी रहने लगता है। पांचवा, इस क्रिया से लिंग पतला और आगे की तरफ मोटा पड़ जाता है, नशे ऊपर आती है, यही निपुंसता का चिन्ह है। छठा, काम की इच्छा करते ही वीर्य की बूंदें लुटक पड़ती है, वीर्य इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष होने पर भी कपड़े पर दाग तक नहीं पड़ता। सातवां, इंद्रिय में वीर्य धारण की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती। हस्त मैथुन करने वाला आदमी औरत के काम का नहीं रहता। आठवां, शरीर के भीतर एक नाड़ी होती है, उसके मनोबहा नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी के साथ शरीर की सब नाड़ियों का संबंध है। जिस प्रकार सब नदियां गंगा में गिरती हैं, उसी प्रकार सब नाड़ियां मनोबहा से मिलती हैं। यह नाड़ी शरीर रूपी भारत में गंगा के समान है। काम इच्छा होने पर शरीर की समस्त नाड़ियां में कंपकंपी पैदा हो जाती है। शरीर से पैर तक सब अंग हिल जाते हैं। तब रक्त का मैथुन होता है और वीर्य उससे अलग होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार धातु दौर्बल्य प्रमेय स्वप्न जैसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं। नवा, शरीर में दो प्रकार के कीट यानी अणु होते हैं, श्वेत अणु और लाल अणु। श्वेत अणु में रोगों के कीड़ों से लड़ने और उसको मार डालने की शक्ति कुदरती होती है। वीर जितना भी पुष्ट होगा, श्वेत अणु उतने ही प्रबल होंगे। वे विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। जब वीर कमजोर हो जाते हैं, तब उस समय प्लेग, हैजा के कीटाणु उनको दबा लेते हैं और शरीर में रोग पैदा कर देते हैं। सब वीर नाश का बारण फल है। दसवां, हस्त मैथुन से जो विषय किया जाता है, उसे दिमाग को धक्का पहुंचता है। इसी से पक्षाघात यानी लकवे की बीमारी पैदा होती है। इसी से गगिये बात, संधिवात, मृगी, पागलपन और मूर्छता रोग पैदा होता है। ग्यारहवां, हस्त मैथुन से दिमाग को झटका लगता है और दिमाग खाली हो जाता है और सिर दर्द पैदा हो जाता है। स्मृति यानी याद शक्ति कमजोर हो जाती है। विवेक विचार वर्तमान नष्ट हो जाती है। संभव है कि शीघ्र पागल हो जावे। पागलखाने में पागलों सर्वेक्षण से यह बात साबित हो चुकी है कि हस्त मैथुन ने बहुत से अपराधियों को पागल बना डाला है। डॉक्टर बर्कमान साहब ने एक किताब में लिखा है, सैकड़े पागल खानों की तहकीकात करने से मुझे यह परिणाम प्राप्त हुआ, जिनको हम पढ़ा लिखा मूर्ख और अशिक्षित समझते हैं, उनमें यह पागलपन का रोग नहीं होता। पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर पागल हो जाते हैं, क्योंकि हस्त मैथुन का रोग पढ़े लिखे लोगों में ही पनपता है। बारहवां, हस्त मैथुन ने सारा शरीर ढीला और पीला पड़ जाता है। मुंह पर तेज रहता ही नहीं। जीवित व्यक्ति मृतक समान हो जाता है। जो लोग भोगानंद को ब्रह्मानंद से भी अधिक आनंददायक मानते हैं। वे बेचारे बहुत दिनों तक भोग को भोग नहीं पाते, भोग ही उनको भोग डालता है। भोगानंद उगता बैंक में भोगता, भोगानंद नहीं भोगया, भोगा ने भोग लिया। संगेपत में उपरयुक्त विवेचन के साथ हुआ कि यदि हम शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं तो हमें ऐसे भयंकर रोग से बचना चाहिए, नहीं तो मौत प्रति क्षण सर पर मंडराती रहेगी। वस्तुतः हस्तमैथुन क्रिया मौत का दूसरा रूप है। ब्रह्मचर्य की व्याख्या। साधारण ब्रह्मचर्य को शास्त्रकारों ने बड़ा कठिन बताया है। समस्त इंद्रियों का संयम यह ब्रह्मचर्य की विस्तृत व्याख्या है। उसका पालन करना बड़ा ही ध्रुव कार्य है। यह बात 99% सच है, 1% इसमें कमी है। इसका पालन इसलिए कठिन लुम होता है कि हम दूसरी इंद्रियों को संयम में नहीं रखते। उससे मुख है रसना इंद्री, जो अपनी जेबा को कब्जे में रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। पुराने शास्त्र के मताओं का कथन है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है उस दर्जे तक मनुष्य नहीं करता। ये सच है। इस कारण देखने से मालूम होता है कि पशु अपनी जेहवे इंद्रिय पर पूरा नियंत्र कर रखते हैं, इच्छा पूर्वक नहीं, स्वभाव ही केवल चारे पर गुजर करते हैं। सोपी सहज पेट भरने लायक ही खाते हैं, वे जिंदगी के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। पर हम तो इसके बिल्कुल विपरीत है। माँ बच्चे को तरह तरह के सुस्वादु भोजन करवाती है कि बालक से प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करते समय हम सब चीजों में स्वाद डालते नहीं बल्कि लेते हैं। स्वाद तो रहता है, भूख के वक्त सूखी रोटी मीठी लगती है और बिना भूख के मनुष्य को लड्डू भी फीके और आस्वाद लगते हैं। पर हम तो अनेक चीजें खा खा कर पेट को ठसा ठस करते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो पाता। जो आंखें ईश्वर ने हमें देखने के लिए दी है उसको हम मलन करते हैं और देखने की वस्तुओं को देखना भी नहीं चाहते। माता को क्यों गायत्री का नाम पढ़ना चाहिए और बालकों को क्यों गायत्री ना सिखावें? उनकी छानबीन करने की अपेक्षा उसके तत्त्व सूर्य उपासना की को समझ कर सूर्य उपासना करते तो क्या अच्छा हो? सूर्य की उपासना तो सनातनी आर्य समाजी दोनों कर सकते हैं। यह तो मैंने स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है, बाकी जो है आपको अपने इष्ट की उपासना कर सकता है। इस उपासना के माने क्या है? सिर ऊंचा रखकर सूर्य नारायण के दर्शन करके आंख को शुद्ध करना। गायत्री रचिता प्रदीप थे, दृष्टा थे। उन्होंने कहा कि सूर्य में जो नाटक जो लीला है वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकती। ईश्वर के जैसा सूत्रधार अन्यत्र नहीं मिल सकता और आकाश से बढ़कर अब रंग भूमि पर कहीं नहीं मिल सकता। पर कौन माता आज बालक का मुंह धोकर उसे प्रकाश दर्शन करवाती है, बल्कि माता के भावों में तो अनेक प्रश्न रहते हैं। बड़े बड़े घरों में जो शिक्षा मिलती है उसके फलस्वरूप शायद लड़का बड़ा अधिकारी होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है। जाने अनजाने शिक्षा मिलती है, उससे वह कितने बातें कर लेता है। माँ बाप हमारे शरीर को ढकते हैं, सजाते हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है। कपड़े बदन को ढकने के लिए हैं, सर्दी गर्मी से रक्षा करने के लिए हैं, सजाने के नहीं। जाड़े से ठिठरते हुए लड़कों को जब हम अंगीची के पास अकेले तके लेंगे अथवा मोहल्ले में खेलने कूदने भेज देंगे अथवा खेत के काम पर छोड़ देंगे, तभी उसका शरीर वज्र की मानंद होना चाहिए। हम तो बच्चों के शरीर का नाश कर डालते हैं। हम उसे ना घर में रखकर गरमाना चाहते हैं। हमने शरीर को दुलरा कर उसे बिगाड़ डाला है। यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में तरह तरह की बातें करके हम उसके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी की बातें किया करते हैं और इस किस्म की चीजें और दृश्य भी उसे दिखाए जाते हैं। आश्चर्य होता है कि महज हम जंगली क्यों न हो गए। मर्यादा तोड़ने के अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा होती रहती है। ईश्वर ने मनुष्यों की रचना इस प्रकार से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। ऐसी उसकी लीला गहन है। यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते से हम उनसे दूर रहें तो इसका पालन बहुत आसान हो जाए। ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं, एक असुरी और दूसरा दैवी। पहला असुरी मार्ग है शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर किस्म के अपाओं से काम लेना, हर तरह की चीजें खाना, हर प्रकार का मांस खाना, शरीर के मुकाबले करना आदि। इस बात में विश्वास रखना कि हट्टे कट्टे होने के लिए मांस मछली शराब कबाब सब कुछ उचित है। दैवी स्वच्छ भोजन को खाना और उक्त वस्तुओं से सख्त परहेज करना। दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने पर दया आती है। महात्मा गांधी जी के उक्त कथन से बात काफी स्पष्ट हो जाती है। वे कहते हैं जब मुझे ऐसा कहा जाता है तो अपने पर दया आती है, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचारी को ना तो कभी बुखार आता है, ना कभी खांसी होती है, ना कभी अपेंडिसाइटिस होता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से अपेंडिसाइट है, परंतु जिनका शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है उसमें यह टिक ही नहीं सकता। अब आंतें शिथिल पड़ जाती है तब वह ऐसी चीजों को अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी आंतें शिथिल होगी इसलिए मैं कोई बीज हजम नहीं कर सकूंगा। बच्चे ऐसी चीजें अनेक खा जाते हैं, माता इसका ध्यान कहाँ रख सकते हैं। और उसकी अंतों में इतनी शक्ति स्वाभाविक होती है कि वह पचा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे पर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रोपण करके कोई मिथ्याचारी ना हो। नैष्ठिक ब्रह्मचारी का तेज तो मुझसे 100 गुना अधिक होना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं, हाँ यह सच है कि मैं जैसा ही बनना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूं, अपनी बहन का स्पर्श न करूं, पर ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी प्रकार का बुखार उत्पन्न हो, जिस तरह के कागज को स्पर्श करने से नहीं होता। मेरी बहन बीमार हो और उनकी सेवा करते हुए उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचारी के कारण मुझे हिलचना पड़े। यह ब्रह्मचर्य 3 कौडी का है। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं, उसी का अनुभव हमें बड़ी सुंदरी युवती के स्पर्श को स्पर्श करके उसी भाव को स्थित रख सकें। हम सच्चे ब्रह्मचारी हैं। यदि आप चाहते हैं कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें, तो इसका अभ्यास क्रम आप नहीं बना सकते, परा ब्रह्मचारी बना सकता है। ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। दूसरा, ब्रह्मचर्य आश्रम सन्यास आश्रम से भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया है। तीसरा, इससे हमारा गृहस्थ आश्रम भी बिगड़ा है, वानप्रस्थ भी बिगड़ा है और सन्यास का तो नाश नाम भी नहीं रह गया। ऐसी हमारी असहाय अवस्था हो गई है। ऊपर जो असुरी मार्ग बताया गया है उसका अनुसरण करके तो आप 500 वर्ष तक का भी मुकाबला न कर सकेंगे। दैवी मार्ग का अनुसरण आज हो तो आज ही उसका मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दैवी साधन से अवश्य मानसिक परिवर्तन करते हुए योग बीच जाते हैं। इस दैवी मार्ग का अनुसरण तभी हम कर सकते हैं जब हमारे पहले पूर्व जन्म का पुण्य होगा और माता पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।